मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों नमस्कार। आज 21 नवंबर 2019 है और आज के इस AFEIS के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, पिछले 3 दिनों से हम लोग लगातार एक विषय पर बात कर रहे हैं, उस विषय के बारे में आप जानते हैं, भय। और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि भय पर आप सब जबरदस्त रूप से अपनी प्रतिक्रियाएं भेज रहे हैं, अपनी समस्याओं की चर्चा कर रहे हैं और आप में से कुछ ऐसे भी प्रिय श्रोता हैं जो बाकायदे तार्किक रूप से भी अपनी बातों को रखने की कोशिश कर रहे हैं। और यह इस बात का प्रमाण है कि इस विषय को आप सबने, आप में से अधिकांशतः ने काफी कुछ अपने लिए व्यावहारिक और अनुकूल पाया है। तो मित्रों, भय कितने तरह के होते हैं, कैसे होते हैं, कुछ उदाहरणों के जरिए हम लोगों ने इसको पहचानने की कोशिश की है। जानने की कोशिश तो हम अभी कर रहे हैं, थोड़ी सी पहचान इसके साथ हमने स्थापित की है। तो आइए, अब मुझे लगता है कि हम उस स्टेज पर आए कि आखिर में भय के क्या क्या कारण हैं। बहुत से उदाहरण आप सबके सामने मैंने पेश किए हैं, आप लोगों ने भी बहुत से अपने अपने भय के बारे में मुझे लिखकर भेजा है, तो मेरे पास काफी कुछ यूं कह लीजिए कि डेटा इकट्ठा हो गया है। और अब मैं उन्हीं सब के अवलोकन अध्ययन के द्वारा आपके सामने कुछ उन कारणों को पेश कर रहा हूं जो हमारे अंदर भय को उत्पन्न करते हैं। और देखिए, कारणों को जाने बिना अगर हम उसके निवारण की बात करते हैं और खासकर अगर समस्या मनोविज्ञान से संबंधित है, तो आप मान करके चलिए कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। एक पौधा सूख गया है, हम उसे हरा करना चाहते हैं और हरा करने के लिए केवल उनकी पत्तियों पर आप यूं कह लीजिए पानी छिड़क रहे हैं, या आप कह लीजिए कि एक गीले कपड़े से उसकी पत्तियों को पोंछ करके पौधे को हरा करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे क्या होगा, आप सब बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ है। तो हमें इनके कारणों को बहुत गहराई से जानना चाहिए और जैसे ही आप कारण जान लेंगे तो सीधी सी बात है वो कारण खत्म कर दीजिए, अपने आप निवारण सामने आ जाएगा। तो आइए अब हम कुछ कारणों की बात करते हैं। कल एक श्रोता ने बल्कि लिख करके भेजा भी और उन्होंने बताया कि जो हमारे भय होते हैं उनमें से बहुत अधिक भय तो काल्पनिक ही होते हैं। देखिए, मैंने आपके सामने चिंता और आशंका की भी बात रखी थी। आप सब ने डेफिनेटली इस पर अपने अपने ढंग से विचार किया होगा और विचार करने के बाद आपने पाया होगा कि सच मायने में जिसे हम भय कहते हैं वो भय नहीं होता, काफी कुछ या तो वह चिंता होती है या हमारी आशंकाएं होती हैं जिन्हें हम अज्ञानतावश भय का नाम दे देते हैं। भय जो है, आप यूं कह लीजिए कि अगर हम इन तीनों को एक ही प्रजाति की चीज मान लें, एक ही प्रजाति के मनोविज्ञान मान लें, तो इसमें भय सबसे खतरनाक है, सबसे गहरा है। पहले आशंका होती है किसी चीज को लेकर के मन में कि कहीं ऐसा तो नहीं हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया। जैसे मान लीजिए कि घर से कोई व्यक्ति बाहर गया है और वो कहता है कि शाम के 5 बजे तक वो लौट आएगा, 5 बजे तक नहीं लौट करके आया, 5:15 बज गए, 5:30 बज गए, तो हमारे मन में अब आशंका पैदा होने लगेगी कि यार क्यों नहीं आया, आ जाना चाहिए, हर समय तो वो टाइम से आ जाते थे, अभी 5:30 बज गए क्यों नहीं आए। इसके बाद 6, 6:30, 7, अगर 7 बज गए तो फिर हमारी जो ये आशंका है वह चिंता का रूप ले लेती है कि भाई अभी तक क्यों नहीं आए, क्या बात है। फिर हम एक्शन में आते हैं, फोन करें, यहां पता करें, आशंका थोड़ी सी गहरी हो जाती है तो वह चिंता का रूप ले लेती है, और जब चिंता और अधिक गहरी हो जाती है तो फिर वह भय का रूप ले लेती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ हो गया हो, चलो पुलिस में रिपोर्ट कराएं। तो अब मन में तरह तरह के भय की भावना पैदा होने लगेगी। तो ये 3 स्तर हैं, शुरुआत होती है आशंका से, फिर वह चिंता में बदलती है और इसके बाद वह भय का रूप ले लेती है। हमें इस अंतर को जरूर समझना चाहिए ताकि हम अपने अंदर जो चीजें उठ रही हैं, जो हमें व्याकुल कर रही हैं, बेचैन कर रही हैं, असंतुलित कर रहे हैं, हम उसके कम से कम घनत्व को तो समझ सकें, उसकी डेंसिटी को समझ सकें कि सच में यह कितनी खतरनाक है। तो पहली बात, मेरी समझ से यह आप सबके दिमाग में क्लियर हो चुकी है। अब आइए, अब हम इसके कारणों पर बात करते हैं और विस्तार के साथ करेंगे, क्योंकि कारणों में ही मैं अपने आप एक तरह से यूं कह लीजिए कि निवारण का समावेश मानता हूं। काल्पनिक भय, ज्यादातर भय आप देखेंगे कि सिर्फ हमारी कल्पना में होती है। हम भविष्य की चिंता कर करके बेवजह, आप यूं कह लीजिए कि भयभीत होते रहते हैं, उसका कोई ठोस कारण नहीं होता। मित्रों, इसके लिए भी मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा। देखिए, हमारे यहां तो जो आरंभिक स्तर पर जो शिक्षाएं दी जाती हैं वो इन कहानियों के जरिए ही दी जाती हैं, और ये कहानी मुझे भी बचपन में किसी ने सुनाई थी। हुआ ये कि एक सेठ जी थे, बहुत ही धनवान सेठ थे, अकूत उनके पास संपत्ति थी। तो एक दिन ऐसे वो बैठे बैठे सोचने लगे, और सोचने के बाद कि मेरे पास कितनी संपत्ति है, ये कितने दिन चलेगी, तो उन्होंने सोचा कि नहीं, मुनीम को बुलाया जाए। उन्होंने अपने मुनीम को बुलाया और मुनीम से उन्होंने कहा कि मुनीम जी, आपको एक काम करना है, आप तो हिसाब किताब लगाने में बड़े माहिर हैं, आप एक काम कीजिए कि आप देखिए कि मेरे पास कुल कितनी संपत्ति है, इसके बाद फिर आप ये देख बताइए मुझे कि मेरी यह जो संपत्ति है ये कितनी पीढ़ियों तक के लिए पर्याप्त है, यानी कि कितनी पीढ़ियां इस संपत्ति से आराम से अपने जीवन बसर कर लेंगी। और उन्होंने फिर एक और भी हिदायत दी कि आप ये मान करके चलिएगा कि अभी मेरा जो कुनबा है, मेरा जो परिवार है, यूं मान लीजिए कि हर 10 साल में ये दुगना हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अभी फैमिली मेंबर्स 10 हैं तो 10 साल में वो 20 हो जाएंगे, फिर आगे आने वाले 10 साल में वो 40 हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप गणित लगा करके बताइए कि जो मेरी संपत्ति है ये कितनी पीढ़ियों तक के लिए पर्याप्त है। देखिए, एक पीढ़ी का मतलब होता है 25 साल, सामान्यतया माना जाता है। तो इसके बाद मुनीम जी ने एक सप्ताह का समय मांगा, उन्होंने कैलकुलेशन किया, और कैलकुलेशन करने के बाद वो लौटे सेठ जी के पास। और लौटने के बाद उन्होंने सेठ जी से कहा कि सेठ जी, आपके पास जितनी संपत्ति है और कैलकुलेशन का जो आपने आधार बताया है उसके आधार पर आप मान करके चलिए कि आपकी जो 6 पीढ़ियां हैं वो बड़े आराम से इस संपत्ति से गुजर बसर कर लेंगे, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो मुनीम ने तो सोचा था कि सेठ जी ये कैलकुलेशन सुनकर के बड़ा खुश होंगे, और खुश होने के बाद वो कुछ इनाम उनाम भी देंगे कि भैया आपने तो 6 पीढ़ियों के लिए मुझे निश्चिंत कर दिया। लेकिन सेठ जी एकदम उदास हो गए, एकदम निराश हो गए, गाल पर हाथ रख करके बैठ गए, उनकी आंखों में उदासी छा गई। मुनीम जी से लगा कि कुछ गड़बड़ हो गई या हिसाब किताब में गड़बड़ हो गया। उन्होंने सेठ जी से पूछा कि सेठ जी क्यों, क्या हुआ, आप तो एकदम उदास हो गए, मैं तो सोच रहा था कि आप एकदम उत्साह से उछल जाएंगे। बोले मुनीम जी, बात यह है कि आपने कहा कि 6 पीढ़ियां बड़े आराम से इसमें गुजर बसर कर लेंगे, अब मेरी चिंता इस बात की है कि 7वीं पीढ़ी का क्या होगा, ये सोच सोच करके मैं अब उदास हो रहा हूं, परेशान हो रहा हूं। दोस्तों, ये इसे आप चिंता कह लीजिए, इसे आप भय कह लीजिए, आप जो भी कह लीजिए, बस इस कहानी से ये नतीजा निकालिए कि यह जो भय है कितना सही है, कितना गलत है, कितना यथार्थ है, कितना काल्पनिक है, कितना तार्किक है, बस ये जानने की कोशिश कीजिए। और जानने के बाद फिर हमें चाहिए कि हम इसे अपने ऊपर अप्लाई करके देखें कि हम जिन कल्पनाओं में डूबे हुए हैं और उन कल्पनाओं को हमने अपने भय का कारण बना लिया है, कहीं हमारा स्वास्थ्य खराब न हो जाए, कहीं हमारी संपत्ति चली न जाए, अगर हम बीमार पड़ जाएंगे तो वो पैसा कहाँ से आएगा, इस तरह के ढेर सारे भय से हम बंधे रहते हैं। तो अब आपको थोड़ा सा उसको अप्लाई करके अपने ऊपर और एनालिसिस उसकी कीजिए, हो सकता है कि यह एनालिसिस आपको इस तरह के काल्पनिक भयों से मुक्त करने में आपकी मदद करें। तो दोस्तों, आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही, अब आप सबकी इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।